एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, यहूदी विरोध, अंग्रेजी में एंटीसेमिटिज्म। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इतिहासकार स्टीवन बेलर के काम पर आधारित हैं, खासतौर पर उनकी किताब है एंटीसेमिटिज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और कुछ और विश्लेषण।
हाँ, और ये विषय भारी जरूर है, पर इसे समझना, मेरा मतलब है, आज के समय में बहुत जरूरी है।
जरूरी क्यों है? मतलब आज इसकी क्या प्रासंगिकता है?
देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि बेलर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो ये मानते हैं कि यहूदियों से नफरत का ये जो खतरनाक रूप हम देखते हैं ना, ये कोई हजारों साल पुरानी चीज नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि ये तो हमारे अपने मॉडर्न जमाने की देन है, आधुनिकता की समस्याओं का एक लक्षण। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे बेलर की नज़र से।
दिलचस्प। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये स्टीवन बेलर हैं कौन, मतलब इनकी बात में वजन क्यों है?
जी, वो एक जाने माने इतिहासकार हैं। उनका काम मुख्य रूप से आधुनिक यूरोप पर है, खासकर ऑस्ट्रिया और मध्य यूरोप का जो इतिहास है ना, उस पर केंद्रित है।
और उनकी खासियत?
हाँ, और उनकी खासियत ये है कि उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की है और वियना शहर और वहाँ का जो यहूदी समुदाय था उसके इतिहास का बहुत गहरा अध्ययन किया है।
वियना, ये अहम क्यों है?
ये इसलिए अहम है क्योंकि जो आधुनिक राजनीतिक यहूदी विरोध है ना, उसका गढ़ एक तरह से 19वीं सदी का वियना ही था।
ओह, अच्छा।
तो बेलर सिर्फ किताबी इतिहासकार नहीं है, वो उस जगह और उस दौर के विशेषज्ञ हैं जहाँ ये सब कुछ पनप रहा था। वो उस बदलाव को बहुत बारीकी से समझते हैं जब पुरानी धार्मिक नफरत, जिसे एंटी यूडिज्म कहते हैं,
हाँ,
वो एक नई नस्ल पर आधारित नफरत यानी एंटीसेमिटिज्म में बदल गई।
समझ गया।
तो बेलर की किताबों का निचोड़ क्या है फिर, मतलब उनका मुख्य तर्क क्या है?
जैसा अभी कहा, उनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि यहूदी विरोध, खासकर इसका वो रूप जिसने हॉलोकॉस्ट जैसी भयानक तबाही मचाई, वो कोई हमेशा से चली आ रही चीज नहीं है। ये एक खास तरह की आधुनिक विचारधारा है।
आधुनिक विचारधारा?
हाँ, बेलर तो इसे आधुनिकता का रोग कहते हैं, पैथोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी।
ये तो सुनने में अजीब लगता है ना, कि जिस आधुनिकता को हम प्रगति से जोड़ते हैं, उसी ने ऐसी नफरत भी पैदा की।
बिल्कुल। और बेलर कहते हैं कि ये विचारधारा 19वीं सदी में उभर कर आई। उस वक्त यूरोप में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे, समाज बदल रहा था, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ।
हाँ, वो औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद का दौर।
बिल्कुल, पूंजीवाद आ रहा था, लोग धर्म से दूर हो रहे थे, राष्ट्रवाद का जोर बढ़ रहा था। तो इन सब बदलावों से जो चिंताएं और डर पैदा हुए, उनका ठीकरा फोड़ने के लिए एक आसान निशाना चाहिए था।
और वो निशाना बने यहूदी।
हाँ, उन्हें इन सारे बदलावों के पीछे का गुप्त हाथ मान लिया गया।
तो बेलर की किताब इसी सफर को दिखाती है, कैसे एक धार्मिक पूर्वाग्रह धीरे धीरे एक नस्लीय राजनीतिक विचारधारा बन गया।
बिल्कुल, एक ऐसी विचारधारा जिसने यहूदियों को उनके धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी कथित नस्ल के आधार पर देखा, जिसे बदला ही नहीं जा सकता था। और ये रास्ता, जैसा आपने कहा, सीधे होलोकॉस्ट तक ले गया।
अच्छा, तो ये तो हुई मोटी बात, लेकिन बेलर इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? वो इस नफरत की जड़ों को और इसके विकास को कैसे देखते हैं? थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस शब्द एंटीसेमिटिज्म से ही। ये शब्द कब आया?
हाँ, ये जानना दिलचस्प है। ये शब्द एंटीसेमिटिज्म खुद 19वीं सदी के आखिर में 1879 में विल्हेम मार नाम के एक जर्मन लेखक ने गढ़ा था।
अच्छा, तो ये नया शब्द था।
हाँ, और नया शब्द अक्सर एक नई सोच का इशारा होता है। मार जैसे लोग अपनी इस नई नफरत को पुरानी धार्मिक कट्टरता से अलग और ज्यादा वैज्ञानिक दिखाना चाहते थे।
वैज्ञानिक नफरत?
हाँ, मतलब वो नस्ल की बात कर रहे थे। ये सिर्फ यहूदी धर्म से नफरत नहीं थी, जिसे एंटी ज्यूडिज्म कहा जाता है, बल्कि ये यहूदी लोगों से, उनकी कथित सेमिटिक नस्ल से नफरत थी। और यहीं पर बेलर सबसे बड़ा फर्क बताते हैं।
क्या फर्क है इन दोनों में, एंटी ज्यूडिज्म और एंटी सेमिटिज्म में?
देखिए, एंटी ज्यूडिज्म यानी यहूदी धर्म विरोध, ये पुरानी धार्मिक नफरत थी। इसमें अगर कोई यहूदी ईसाई बन जाता तो सैद्धांतिक रूप से वो नफरत का शिकार होने से बच सकता था, समस्या धर्म में मानी जाती थी।
अच्छा।
लेकिन एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध, ये नई नस्लीय नफरत थी। इसमें माना गया कि यहूदी होना खून में है, नस्ल में है, इसे बदला नहीं जा सकता। धर्म बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्या तो जैविक है।
और यहीं पर बात सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि फिर बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, है ना?
बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या इसकी जड़ें प्राचीन काल में नहीं है? अक्सर तो यही कहा जाता है कि यहूदियों से नफरत तो सदियों पुरानी है, ती देते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, पुराने जमाने में भी यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी थी, उन्हें अलग थलग रहने वाला माना जाता था। बाद में ईसाइयों ने उन पर ईसा मसीह की हत्या का आरोप लगाया, उन्हें लालची सूदखोर बताया, शैतान का साथी कहा, ये सब था।
तो फिर फर्क क्या है?
बेलर का तर्क है कि ये दुश्मनी ज्यादातर धार्मिक थी। ईसाई धर्म ने वो माहौल जरूर बनाया जिसमें बाद में नस्लीय नफरत पनप सकी, लेकिन उनका मुख्य निशाना धर्म बदलवाना था, जान से मारना नहीं।
तो कहानी में बड़ा मोड़ कब आया? वो नुक्ता है तब्दीली, पॉइंट ऑफ चेंज कब था?
वो मोड़ आता है 18वीं-19वीं सदी में, जब यूरोप में प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट का दौर आया और यहूदियों को धीरे धीरे बराबरी के अधिकार मिलने लगे। इसे जूश इमेंसिपेशन कहते हैं।
हाँ, उन्हें गेटोस से निकलने का मौका मिला।
बिल्कुल, समाज का हिस्सा बनने का मौका मिला। लेकिन अजीब बात यह हुई कि इसी बराबरी ने एक नई समस्या खड़ी कर दी, जिसे कहा गया यहूदी प्रश्न।
यहूदी प्रश्न? उसका क्या मतलब?
इसका मतलब था कि भाई, अब इन नए बने नागरिकों का समाज में क्या रोल होगा? और जैसे जैसे यहूदी व्यापार, पढ़ाई, कला वगैरह में कामयाब होने लगे, वो समाज में ज्यादा नजर आने लगे।
हाँ, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी।
होनी चाहिए थी, पर हुआ उल्टा। उनकी ये कामयाबी और उनका पुराना बाहरी होने का ठप्पा, इन दोनों ने मिलकर उन्हें बदलते हुए समाज के डर और शक का केंद्र बना दिया। कई लोगों को लगा कि ये लोग अपनी जड़ों से कटे हुए हैं, इनकी वफादारी हमेशा शक के घेरे में है, और ये नए जमाने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
और यहीं से वो नई वाली नफरत यानी आधुनिक एंटीसेमिटिज्म पैदा होती है, जिसका जिक्र बेलर करते हैं।
बिल्कुल, ये सीधे तौर पर उस यहूदी प्रश्न और आधुनिकता से पैदा हुई बेचैनी का नतीजा थी।
इसके मुख्य हथियार क्या थे? मतलब ये नफरत फैली कैसे? बेलर कुछ चीजें गिनाते हैं शायद।
हाँ, बेलर कुछ मुख्य तत्व बताते हैं। पहला था नकली नस्लीय विज्ञान। उस दौर में नस्लवाद को वैज्ञानिक जामा पहनाने की कोशिश हुई। कहा गया कि यहूदी तो जैविक रूप से ही अलग और खतरनाक नस्लें हैं, जो यूरोप के आर्य नस्लों के दुश्मन हैं।
और दूसरा,
आर्थिक बलि का बकरा बनाना। और कमाल की बात यह है कि यहूदियों पर इल्जाम लगाया गया कि वो बड़े पूंजीपति जैसे रॉथस्टाइल्ड परिवार बनकर दुनिया को लूट रहे हैं।
हाँ, ये तो सुना है।
और साथ ही ये भी इल्जाम लगा कि वो खतरनाक समाजवादी और कम्युनिस्ट जैसे कार्ल मार्क्स बनकर समाज को तोड़ रहे हैं।
ये कैसे हो सकता है? मतलब दोनों इल्जाम एक साथ?
हाँ, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। इससे हर तरह के लोग, अमीर गरीब, डानपंथी वामपंथी, उन्हें अपना दुश्मन मान सकते थे। इसे मूर्खों का समाजवाद भी कहा गया।
तीसरा क्या था?
तीसरा था उग्र राष्ट्रवाद। जब यूरोप में देश अपनी पहचान खून और मिट्टी के आधार पर बना रहे थे, तो यहूदियों को एक अंतर्राष्ट्रीय या बिना जड़ों वाला समूह माना गया, जो किसी भी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते। उन्हें राष्ट्र के लिए खतरा समझा गया।
और चौथा, वो साजिश वाली थ्योरीज?
हाँ, षड्यंत्र के सिद्धांत। और सबसे खतरनाक शायद यही था, द प्रोटोटॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन जैसी जाली किताबें फैलाई गईं। ये झूठा दस्तावेज ऐसा दिखाता था मानो दुनिया भर के यहूदी नेता गुप्त मीटिंग करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हों। इसने यहूदियों को एक ऐसे मास्टर विलेन के तौर पर पेश किया जो पर्दे के पीछे से सारी दुनिया चला रहा है।
बाप रे, तो ये सारे तत्व मिलकर?
हाँ, ये सब मिलकर सीधे हॉलोकॉस्ट तक ले गए। बेलर दिखाते हैं कि कैसे पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, देश में भारी उथल पुथल मची। ऐसे माहौल में हिटलर और नाजी पार्टी ने पहले से मौजूद यहूदी विरोधी विचारों को उठाया और उन्हें अपनी विचारधारा का केंद्र बना लिया।
उन्होंने इन विचारों को और ज्यादा चरम पर पहुंचा दिया।
बिल्कुल,
उनके लिए इतिहास बस आर्य नस्ल और यहूदी नस्ल के बीच की जंग थी। यहूदी उनके लिए सिर्फ कोई दुश्मन या विरोधी नहीं थे, बल्कि एक नस्लीय कीटाणु थे। एक बीमारी थी जिसे जड़ से मिटाना जरूरी था।
एक बीमारी?
हाँ, बेलर कहते हैं कि होलोकॉस्ट या अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन, इसी सोच का नतीजा था। जब आप किसी पूरे समूह को एक जैविक खतरा मान लेते हैं, देश के शरीर में कैंसर की तरह, तो फिर उसे मिटाना एक जरूरी इलाज लगने लगता है। ये दिखाता है कि होलोकॉस्ट कोई अचानक हुआ पागलपन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी विचारधारा का भयानक अंजाम था जो धीरे धीरे पनप रही थी।
होलोकॉस्ट के बाद जाहिर है दुनिया हिल गई होगी, खुलेआम नस्लीय नफरत फैलाना मुश्किल हो गया होगा, कम से कम पश्चिमी देशों में।
हाँ बिल्कुल, लेकिन बेलर कहते हैं कि ये नफरत खत्म नहीं हुई, बस इसने अपना रूप बदल लिया।
रूप बदल लिया कैसे? इसके कई उदाहरण हैं, जैसे सोवियत यूनियन में, वहां कहने को तो नस्लवाद का विरोध था, लेकिन अक्सर एंटी जायनिज्म या एंटी कॉस्मोपोलिटनिज्म के नाम पर यहूदियों को निशाना बनाया गया।
एंटी जायनिज्म मतलब इसराइल राज्य का विरोध।
हाँ, और अरब देशों में इसराइल बनने के बाद यूरोप से आई यहूदी विरोधी किताबें जैसे वो प्रोटोकॉल्स खूब फैली और इसराइल विरोध के साथ मिल गईं। बेलर एंटी जायनिज्म और यहूदी विरोध के बीच के पेचीदा रिश्ते पर भी बात करते हैं।
क्या रिश्ता है इन दोनों में? क्या इसराइल की आलोचना करना हमेशा यहूदी विरोध है?
नहीं, बेलर साफ करते हैं कि इसराइल की नीतियों की आलोचना करना हमेशा यहूदी विरोध नहीं होता। कोई भी देश आलोचना से परे नहीं है, लेकिन ये तब बन जाता है जब इसमें वही पुरानी बातें दोहराई जाएं।
जैसे?
जैसे यहूदी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी वफादारी संदिग्ध है, या जब सिर्फ यहूदियों के अपने देश के अधिकार पर ही सवाल उठाया जाए, ऐसा किसी और समूह के लिए ना किया जाए, तब ये शक पैदा करता है।
हाँ, और आजकल हम होलोकॉस्ट को झुठलाने की बातें भी सुनते हैं।
या फिर धुर दक्षिणपंथी राजनीति में यहूदी विरोध का फिर से दिखना।
हाँ, ये सब उसी बदले हुए रूप के उदाहरण है। तो कुल मिलाकर बेरर का निष्कर्ष ये है कि यहूदी विरोध एक बहुत ही जिद्दी और बदलने में माहिर सांस्कृतिक कोड है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है।
एक सांस्कृतिक कोड।
हाँ, ये मुश्किल समस्याओं का एक आसान और झूठा जवाब देता है। ये आधुनिकता की ही पैदाइश है और जिन वजहों से ये पैदा हुआ, जैसे वैश्वीकरण का डर, आर्थिक उठापटक, समाज का तेजी से बदलना, वो आज भी हमारे आसपास मौजूद है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ खास बातें निकालनी हो, कुछ मुख्य संदेश, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और शायद सबसे अहम बात यही है कि यहूदी विरोध आधुनिकता का एक साइड इफेक्ट है। ये कोई पुरानी दकियानूसी सोच नहीं, बल्कि नए जमाने के डर और तनावों से उपजी चीज है।
हाँ, ये बात बार बार सामने आई है। दूसरी क्या होगी? दूसरी, नफरत का धर्म से नस्ल पर टिक जाना। ये सबसे जानलेवा मोड़ था, क्योंकि जब बात खून और नस्ल पर आ गई तो धर्म बदलने या सुधरने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसने सीधे सीधे नरसंहार का रास्ता खोल दिया।
सही है। तीसरा?
तीसरा, यहूदी परम बलि का बकरा बने। उन पर एक ही वक्त में बिल्कुल उल्टे इल्जाम लगाए गए कि वो बड़े पूंजीपति भी है और खतरनाक क्रांतिकारी भी।
हाँ, ये विरोधाभास।
इससे वो हर किसी के लिए एक आसान दुश्मन बन गए, जिस पर समाज की हर बुराई का ठीकरा फोड़ा जा सकता था।
चौथा क्या कहेंगे?
चौथी बात, राष्ट्रवाद से इसका गहरा नाता। जब देशों ने अपनी पहचान खून, भाषा और जमीन से जोड़नी शुरू की, तो यहूदियों को, जिन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय माना जाता था, बाहरी और संदिग्ध करार दे दिया गया।
और पांचवी?
वो साजिश वाली बात। हाँ, साजिश की कहानियों की ताकत। ये सिर्फ नापसंदगी नहीं थी, ये एक पूरी सोच थी कि दुनिया को पर्दे के पीछे से कुछ गिने चुने यहूदी चला रहे हैं। प्रोटोकॉल्स जैसी झूठी कहानियों ने इस पागलपन को हवा दी, क्योंकि ये उलझी हुई दुनिया का एक बहुत ही आसान और सरासर गलत जवाब देती थी।
और ये पैटर्न, क्या ये सिर्फ यहूदी विरोध तक ही सीमित है या हम इसे और कहीं भी देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पैटर्न सिर्फ यहूदी विरोध तक सीमित नहीं है। हम अपने आसपास भी देखते हैं, चाहे भारत हो या कोई और देश, कि जब समाज में तनाव बढ़ता है या आर्थिक मुश्किलें आती हैं, तो अक्सर किसी एक खास समूह को निशाना बनाना, उसे बलि का बकरा बनाना कितना आसान हो जाता है ना?
हाँ, ये बात तो है।
तो बेलो का विश्लेषण हमें ऐसे खतरनाक रुझानों को पहचानने और उनके प्रति सावधान रहने में मदद करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के खिलाफ क्यों न हो।
बेलर के विश्लेषण में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे उनका ये कहना कि यहूदी विरोध को हमेशा से चली आ रही नफरत समझने के बजाय एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर देखना चाहिए,
जो आधुनिकता के संकटों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक सांस्कृतिक कोड की तरह काम करती है।
ये सांस्कृतिक कोड वाली बात बहुत अहम है। मतलब ये सिर्फ भावना नहीं है।
नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। दुनिया को देखने का एक तरीका, कुछ खास प्रतीक जैसे लालची बैंकर्स, साजिश करने वाला यहूदी और कुछ कहानियां, ये कोड लोगों को दुनिया समझाने में मदद करता है, भले ही गलत तरीके से, और उन्हें राजनीतिक तौर पर भड़काने के काम आता है।
और वो बात जो हमने पहले भी कही थी कि असली बदलाव तब आया जब आपत्ति यहूदियों के विश्वास यानी यहूदी धर्म से हटकर यहूदियों के होने यानी एक नस्ल पर चली गई।
हाँ, पहले वाले को धर्म बदलकर ठीक किया जा सकता था, दूसरे वाले से सिर्फ मौत ही बचा सकती थी।
ये धार्मिक नफरत और नस्लीय नफरत के बीच के जानलेवा अंतर को एकदम साफ कर देता है। बिल्कुल, नस्ल की बात आते ही सुलह या बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।
और ये विचार भी कितना अजीब है कि यहूदियों को बराबरी के अधिकार मिलने यानी मुक्ति ने असल में यहूदी प्रश्न खड़ा किया।
हाँ, कि जैसे ही वो नागरिक बने वो मुकाबले में आ गए और उनकी कामयाबी ही उनके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। ये दिखाता है कि कैसे तरक्की भी अपने साथ नई मुश्किलें ला सकती है।
सही कहा, आधुनिक समाज के अंदरूनी जलन और प्रतिस्पर्धा से इसे जोड़ता है ये।
तो अब सवाल उठता है कि इस सारे इतिहास को जानने का आज हमारे लिए क्या मतलब है, हम इससे क्या सीख सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में।
देखिए, पहली बात तो ये कि हम राजनीति में बलि का बकरा बनाने की रणनीति को पहचानना सीखें। जब भी हम देखें कि किसी बड़ी जटिल समस्या के लिए किसी एक समूह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए।
हाँ, ये एक चेतावनी संकेत है।
बिल्कुल, बेलर दिखाते हैं कि ये रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, साजिश की कहानियों और झूठी खबरों के खिलाफ सोचना सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग।
ये तो आज के दौर में बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया के जमाने में।
हाँ, बेलर ने प्रोटोकॉल्स का उदाहरण देकर बताया कि कैसे झूठ का असर कितना भयानक हो सकता है। हमें हर जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, सबूत मांगना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए।
और तीसरा,
वो एंटी ज़ायोनिज्म वाला मुद्दा।
हाँ, तीसरा, ये हमें एंटी ज़ायोनिज्म और यहूदी विरोध पर जो बहसें चलती हैं, हाँ, उन्हें समझने में मदद करता है। ये एक फ्रेमवर्क देता है। क्या इसराइल की आलोचना वैसी हो रही है जैसे किसी और देश की होती है, या उसमें वही पुरानी यहूदी विरोधी बातें छिपी हुई हैं? क्या वो यहूदी लोगों के अपने वजूद के अधिकार को ही नकार रही है? ये सवाल पूछना जरूरी है।
और आखिर में ये हमें पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसके खतरों से आगाह करता है। ये दिखाता है कि जब हम लोगों को उनकी इंसानियत से ज्यादा उनकी नस्ल या पहचान से देखने लगते हैं तो कितनी आसानी से नफरत और हिंसा का रास्ता खुल जाता है। इतिहास को जानना हमें आज के खतरों को पहचानने में मदद करता है, चाहे वो किसी भी समूह के खिलाफ क्यों ना हो। ये एक तरह की नागरिक जिम्मेदारी है।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक ये है कि जो सबसे भयानक नफरतें होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा से चली आ रही हों। कई बार वो हमारे अपने समय की पैदाइश होती हैं जिन्हें सोच समझकर राजनीतिक फ़ायदे के लिए बनाया और फैलाया जाता है। ये सिर्फ अंधविश्वास या गुस्सा नहीं, ये एक पूरी विचारधारा होती है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि विचारों के सचमुच कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 19वीं सदी में कागज़ पर लिखी गई नस्लवादी बातें वो 20वीं सदी में गैस चेंबरों की हकीकत बन गईं। और ये भी कि जिस आधुनिकता ने हमें विज्ञान और तरक्की दी, उसी ने हमें नफरत और तबाही के नए और ज्यादा कारगर हथियार भी दिए।
ये इतिहास हमें लगातार चौकन्ना रहने की याद दिलाता है।
बिल्कुल, नफरत और साजिश की सोच सिर्फ अतीत की बात नहीं है, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।